श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोही हरहु कलेश विकार बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की बोलिए श्री हनुमंत लाल की। प्रिय बंधुजनों, अब हम आपके समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से ये दूसरा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, राम वनवास। इसमें आप देखेंगे कि भगवान राम अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए वनवास कैसे जाते हैं। भगवान श्री राम आनंद सागर के समस्त सुखों को बटोर कर अयोध्या में वापस आ गए हैं, और उस समय का आप दृश्य देखें, आज वो दशरथ कितने भाग्यशाली हैं, जो कि एक पुत्र के लिए परेशान थे, लेकिन आज उनके घर में चार चार कुल वधुएं आई हुई हैं। हमारे गोस्वामी बाबा क्या लिखते हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भगवान राम का विवाह हुआ है ना, जिस समय माता कौशल्या के आंगन में चार चार कुल वधुएं आई और माता कौशल्या ने जिस समय सभी बहुओं की परछन की ना, जरा मां का भाग्य देखो। मां बार बार बलिहार जाती है, सभी बहुओं की परछन करती है कि राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साज सजन सब लागी एही विधि सब ही दे त सुख आए राज द्वार मुदित मातु परछन करही बधुन समेत कुमार सेज रुचिर रथ राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए मारग जात भयावन भारी मारग जात भयावन भारी के विधि ताट ताड़िका मारी समस्त जो प्रश्न आदि कार्य होते हैं ना, उनको करने के पश्चात माँ कौशल्या ने पूछा, बेटा राम एक बात तो बताओ, हमने सुना है कि तुमने इन सुकुमार हाथों से इतनी भयानक तारिका का निधन कर दिया, कैसे किया, किस बलबूते पर किया? प्रभु ने कहा, माँ सब आपके चरणों के आशीर्वाद से किया। भगवान राम के पिता दशरथ कहते हैं, सुनो कौशल्या, एक बात सुन लो हमारी, कि आज से तुम जो हो ना चार चार कुल वधुओं की सास बन गई हो, और जानती हो सास का धर्म क्या होता है? साथियों, आप देखते हैं कि देश के अंदर घर घर में सास और बहू का झगड़ा हमेशा होता रहता है। ऐसा क्यों? अगर दो बातें सास और बहू के बीच में आ जाए ना, तो शायद कभी भी सास और बहू का झगड़ा नहीं होगा। अगर सास इस प्रकार से अपनी बहुओं को मानने लगे और बहुएं भी अगर इस प्रकार से सास को मानने लगे, तो सास और बहू का झगड़ा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सास को अपनी बहू को कैसे रखना चाहिए, ये बात महाराज दशरथ बताते हैं कौशल्या से। हे कौशल्या, आज से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कि परी लरिकनी बधु घर आए बधु घर आए राखे उनायन पलक की नाए देखो आज से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सास को अपनी बहू को कैसे रखना चाहिए कि जैसे हमेशा आंखों के अंदर दीदों की रक्षा करने के लिए पलकें तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं, उसी प्रकार से बहू को हमेशा खुश रखने के लिए या बहू की रक्षा करने के लिए सास को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और बहू का धर्म क्या है? बहू का धर्म है कि जिस प्रकार वो अपने माता पिता से प्रेम स्नेह रखती है, उसी प्रकार से उसे अपने सास और ससुर से भी स्नेह रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। जब ये दोनों संबंध हो जाएंगे ना, पहले के जमाने में जब बहुएं अपने मायके में जाती थी ना और माँ बाप पूछते थे कि बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, तो अगर सास खराब भी होती थी ना तो उसे लोग कह दिया करते थे ना, या बहुएं कह दिया करती थी हमारी सास बड़ी अच्छी है। लेकिन आजकल की कल जो भैया बहुएं अगर अपने मायके में जाती है ना और अगर उनसे उनकी माँ पूछे कि बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, अगर सास एक इंच खराब होती है ना तो चार इंच खराब बताती है। देखिए एक आदमी की बहू जो अपने मायके में पहुंची, उसकी माँ ने पूछा बेटी तुम्हारी सास कैसी है, तो क्या बोली कि मैया सास निगोड़ी लड़ा कर है, माँ सास निगोड़ी लड़ा कर है। कहा बेटी तुमको बड़ा सुख देती होगी। कहा हाँ जानती हो कैसा सुख, मचिया पर मूर्ति ऐसी बैठ बेबात की बात उठावती है, मिलिया केरा भोपू जब बाजे अंधियारे हमें जगावती है। ना उठी तो नथुनन का फुलाए, उनसे नाम कैसे ले, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है ना नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती। एक श्रीमती जी हमारी कथा में आई, कहने लगी पंडित जी 2 रुपए लीजिए। हमने कहा नाम बताइए। कहा है, है। हमने कहा भाई है का मतलब क्या हुआ। कहा उनका नाम कैसे ले, मतलब नाम नहीं लेती। आज वो बताती क्या है, मचिया पर मूरत ऐसी बैठ बेबात की बात उठावती है, और मिलिया केरा भोपू जब बाजे अंधियारे हमें जगावती है। ना उठी तो नथुनन का फुलाए, उनसे उनसे 2 की 10 जड़ा करे, माँ सास निगोड़ी लड़ा करे। साथियों वृत्तांत तो बड़ा लंबा है, लेकिन यहां प्रसंग चल रहा है राम वनवास का, कभी हासरस का प्रसंग आएगा उसमें हम आपको आनंद देंगे। यानी हमें यह समझाना है कि सास और बहू का कर्तव्य क्या है। तो बातें सास और बहू के मध्य में आ जाएंगी तो मेरे बंधुजनों हमारे देश का सुधार हो जाएगा। सास और बहुएं जो है ना कभी भी आपस में युद्ध नहीं करेंगी। महाराज दशरथ इस प्रकार से आनंद के समेत अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ना हमेशा सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। एक दिन महाराज दशरथ ने जिस समय शीशे में अपना मुख देखा और सर के सफेद बाल दिखाई पड़े, उस वक्त विचार करने लगे कि दशरथ अब तो तेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब तुझे प्रभु का भजन करना चाहिए और राज जो है वो अपने बड़े बेटे राम को देकर तुझे वन में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रजा से आज परामर्श लेकर के और यह ऐलान कर दिया गया कि भाई राम का राजभिषेक होगा। इधर तो देखिए घर घर में भगवान राम के राजभिषेक की तैयारियां हो रही हैं कि घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे बंधन वारे भी लहराए। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णाम्बर पाटम्बर शोभा पाते थे। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। ऐसे सुंदर महाराज के यहाँ पर राज तिलक हो रहा है राम का, तो घर घर में खुशी का समाचार क्यों ना हो। सारी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। लेकिन साथियों, मैंने आपसे पहले कहा है कि ना हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल निकलता है तो दिन हो जाता है, सूर्य ढलते ही रात आ जाती है, उसी प्रकार से जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख है कभी दुख है। जो महाराज दशरथ इस समय आनंद के सागर में डूबे हुए हैं, धीरे धीरे तकदीर उनका भाग्य उनको दुखों की तरफ लिए जा रहा है। कैकई सुमित्रा कौशल्या तीनों रानियां हैं, लेकिन इन तीनों रानियों में जो कैकई है ना, वो महाराज की कुछ अधिक प्रिय है। और कैकई की एक सबसे प्रिय दासी थी जिसका नाम था मंथरा। और मंथरा जो थी ये कैकई के साथ में मायके से ही आई हुई थी, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे जब बहुत कुछ माताएं अपनी बहुओं पर क्रोधित हो जाती है ना, तो कहने लगती है अगर इतनी ही सुकुमारी थी तो अपने मायके से ना दास और दासियां लाई होती। तो पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े महाराज लोग जो हैं वो अपनी बेटियों के साथ में आजीवन के लिए कुछ दासियां भेज दिया करते थे कि ये जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगी। कैकई के साथ में मायके से ही मंथरा आई हुई है। आज जिस समय मंथरा ने देखा कि पूरी अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, साथियों आज मंथरा को बड़ा ही क्रोध आया। मेरे बेटे समान भरत को राज तिलक ना देकर कौशल्या के बेटे राम को राज तिलक दिया जा रहा है, ऐसी भावना उसके अंदर आती है। क्योंकि ये सब जब देवताओं ने माता सरस्वती का ध्यान किया तो माँ सरस्वती ने आकर के देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य को सफल बनाने के लिए और मंथरा के सिर के ऊपर बैठकर उसकी भावना को बदल दिया। आज मंथरा पहुंचती है कहां, कैकई के पास, बड़ा अजीब सा भेष बनाकर, और कहने लगी रानी जी आप आनंद की नींद यहां सो रही हैं, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि आपके जीवन में कौन सा विष घोला जा रहा है। कि बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा ये नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल गायन महलों में जाती है। आज मंथरा ने अपना अजीब भेष बनाया, बालों को बिखेर लिया, सिर के बाल खोल करके डायनों के समान जिस समय कैकई के पास पहुंची, कैकई ने देखा है ये तेरा रंग क्या है, हम सबने तो अपने शीश गुथाए हैं पर तूने आज अपने सारे बाल बिखेरे हुए हैं, तू रो रही है, सगुन शायद ये तेरा कैसा कुलक्षण दिखाई पड़ रहा है, कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, तुझको मेरी सौगंध, जल्दी बता दासी आज तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है। या सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी उठी नागनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। अरे रानी जी आपको नहीं मालूम कि भगवान राम यानी राम के घर घर में राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। जिसका बेटा कल राज तिलक पर बैठेगा ना उसका मर्तबा बुलंद हो जाएगा, कि जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा भी जिसे चाहते हैं रानी या फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए हैं भाग्य कौशल्या के है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजा की। अरे रानी जी आपको साथ नहीं मालूम, जिसके बेटे का राज तिलक होगा ना उसी की माँ का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। धन्य है कौशल्या के भाग्य खुल गए, भगवान ने उसकी सुन ली, ब्रह्मा ने उसके भाग्य को खोल दिया। वास्तव में चौसर की बाजी में कौशल्या ने बाजी मार ली। आज जब ऐसी बातें सुनी कैकई ने कहा री मंथरा आज तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आज तू ऐसी उलझनपूर्ण बातें करती है। जब ही मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकई संभली उठी फिर बोली धिक्कार। कस के क्रोध में आकर कहती है दुष्ट चांडालनी क्या तेरी मति मारी गई है जो स्वच्छ रुई की ढेरी में आज आग की चिंगारी बनकर आई है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युराज राम होगा जिस क्षण तो तुमको मुंह मांगा दूंगी। अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कारी आहले, कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हारी आहले। अरे दासी तूने ये सुंदर समाचार सुनाया है कि राम का राज तिलक होगा, ले मैं तुझे इस खुशी में ये इनाम में हार देती हूँ। मंथरा पीछे हटकर बोली बस रानी जी बस, ये हार आपको ही स्वीकार हो, ये हार तुम्ही की शोभा हो, दासी न लाल चिन्ह माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र पति होगा ये वचन दिया था राजा ने। आपको मालूम नहीं जिस समय महाराज ने आपके साथ में विवाह किया था उस समय आपको वचन दिया था कि हम दो वरदान देंगे, और आप उनकी चालाकी देखिए किस ढंग से पलटा खाते हैं। भरत और शत्रुघ्न को तो ननिहाल भेज दिया और पीछे से चुपके से चाहते हैं ना कि भरत जो है ना अपना हक ना मांग पाए और राम को राजगद्दी दे दूं। उन महाराज की चाल रानी तुम नहीं समझ रही हो। मुझको समान है राम भरत, जब ऐसा कहा तो क्रोध में और फबक उठी। कई कई कहती है मंथरा, रानी ने फिर से कहा, अरे वो दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। चुप हो जा बदकार, मैं तुझसे ये कहती हूँ कि राजपाट की बात तो मैं तुझको बोलने का क्या हक है। शायद तुझको ये नहीं मालूम कि मेरे लिए राम और भरत दोनों एक ही समान हैं। एक पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया के वो दो पर हैं, वही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। चुप हो जा, अगर भरत गोदी का दुलारा है तो राम हमारे नैनों का प्यारा है। दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। चाहे राजा भरत बन जाए और चाहे राजा राम बन जाए, लेकिन मेरे लिए दोनों एक ही बराबर, मुझको दासी ही रहना पड़ेगा, कोई मुझको रानी नहीं बना देगा। लेकिन मैंने भरत को बचपन से गोद में खिलाया है, जीवन भर आपके साथ निभाया है, आपके मायके से आई हूँ ना, इसीलिए आपके साथ में ये धोखा होते हुए देखा नहीं जाता। आज नमक जो है वो बार बार पुकार रहा है कि अपने मालिक के साथ नमक का हक अदा करो। साथियों, एक कहना है कि अगर आप किसी का घर फोड़ने पर ही आ जाए ना, लोग कहते हैं कि कोई गीली लकड़ी हो ना जल रही हो, लेकिन जब उसमें आप 100 फूके लगाएंगे तो 100 फूकों के जोर से गीली लकड़ी भी जलने लगेगी। उसी प्रकार से किसी का कितना भी सुंदर घर हो, लेकिन अगर कोई उसके अंदर कुमति फैलाने पर ही आ जाए तो एक समय वो आ जाएगा कि वो व्यक्ति कुमति के चक्कर में फंस ही जाएगा। वही हाल आज कैकई के साथ हुआ। मंथरा की इन कुटिल बातों से आज कैकई जो है ना बेचारी अपने को न बचा सकी, हृदय में भाव आ गया, ये सत्य है, महाराज मेरे भरत के साथ में अन्याय कर रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरे बेटे भरत को राज मिल जाए। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकरा छीर। आपस में मंथरा और कह कह कि वही दशा हो गई जैसे दूध और शक्कर आपस में मिल जाते हैं। हंस करके कहती है मंथरा, सुनो रानी, तुमको भवन में जाकर और महाराज से दो वरदान मांगना। कौन से दो वरदान? एक वरदान में भरत को राज्य, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। और एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि महाराज दशरथ भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे पहले राम की सौगंध उनसे खिलवा लेना। भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगे हूँ जे ही वचन न कराई, महाराज दशरथ से पहले सौगंध खिलवा लेना, उसके बाद में मांगना। और जानते क्या मांगना? कि कहना दो वचन मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी हो। चौदह वर्षों को रामचंद्र, चौदह वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। आज जब इस प्रकार से परामर्श हो गया, विचार बन गया, कह कई कोप भवन में जाकर लेट गए। कोप भवन मतलब गुस्से वाला कमरा। साथियों, पहले बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ ऐसा हुआ करता था ना कि वो लोग अपने यहाँ पर एक गुस्से वाला कमरा बनवाते थे। जैसे आजकल देखें आप घर में कोई परिवार के अंदर यदि क्रोध में हो जाए, गुस्से में हो जाए, तो मालूम ही नहीं पड़ता कौन भाई गुस्से में है और कौन प्रसन्न है। लेकिन पहले एक नियम था, घर के अंदर एक घर ऐसा बनाया जाता था, एक कमरा ऐसा बनाया जाता था कि यदि घर का कोई व्यक्ति नाराज हो जाए तो उस कमरे में जाकर लेट जाए, बैठ जाए, तो पूरे घर के लोग समझ जाएंगे आज वो को भवन के अंदर है, गुस्से वाले कमरे के अंदर है, और लोग समझ जाते थे ये नाराज है। उससे पूछा जाता था तुम्हारी समस्या क्या है, आप क्यों परेशान है, क्यों नाराज है। कह कई को भवन में जाकर लेट गई। इधर देखिए राम के राजभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और उधर कैकेयी को भवन में लेती हुई है। जिस समय महाराज दशरथ को यह सूचना मिली कि कैकेयी को भवन में विराजमान है, घबरा गए, धीरे छोड़ करके गए, हे नाथ ये क्या हो गया, कैकेयी आज को भवन में। रानी में पूरी तरह भड़की जब ये आग, अनसन पाती ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग, कैकेयी को भवन में लेटी है। लेकिन को भवन के अंदर उसका रूप कैसा है, जरा इस चीज का आप अनुभव करें कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए, मिस्सी ने होठ किए काले, मिस्सी ने होठ किए काले, भौटेढ़ी भौटेढ़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की, सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई, दासी के हवा बदलते ही, दासी के हवा बदलते ही, रानी पतझड़ हो गई है, रानी पतझड़ हो गई, आज ये दशा है। कह गई कि महाराज जब को भवन में पहुंचे तो आज पूछते हैं कैकेयी से कि समय नरेश प्रिया पही गयऊ। आज पूछते हैं हे प्राण प्रिय, अरे इतना तो बतलाओ, घर घर में आज खुशियों का त्योहार मनाया जा रहा है, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, राम का राजतिलक होने जा रहा है, और तुमने ये कैसा भेष बना रखा कि हे प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों।